जिनके गुणों के दान में वे वर्धमान महान दिन बिचरे हमारे ध्यान। अभी तक अपन समय सार परमागम की कर्ता कर्म अधिकार की 94 और 95वीं गाथा की चर्चा कर रहे थे। जो भी चर्चा अपन ने इतने दिनों में की और मूल गाथा में जो बात कही गई है, आचार्य अमृतचंद की टीका में जो बात कही गई है, गुरुदेव के प्रवचनों में जो बात आई है, उसका सार क्या है, देखिए जो किताब जिसके पास है वो निकाले पेज नंबर 176 की सबसे नीचे पंक्ति, 176 की सबसे नीचे की पंक्ति। और जिनके पास वो किताब नहीं है, ये किताब है, वो लोग इसका पेज नंबर 121 नंबर निकालें, 121 नंबर पर तीसरा पैरा। इन सबका सार क्या है उसको एक निष्कर्ष रूप दो पैराओं में बांधा है, जिससे कि आपका दिमाग इन सब में ना उलझ कर व्यवस्थित हो जाए कि आखिर इन दो गाथाओं में कहा क्या गया है। देखो पर और निज में अवशेष दर्शन रूप मिथ्या दर्शन, अवशेष ज्ञान रूप मिथ्या ज्ञान और अवशेष रति रूप रमणता रूप लीनता रूप मिथ्या चारित्र, ये तीनों स्वीकार चैतन्य परिणाम हैं, आत्मा के ही विकारी परिणाम हैं। और इनको ही यहाँ तीन प्रकार का उपयोग कहा गया है, हुआ था त्रिविधि है उपयोग है? क्या अवशेष दर्शन माने दोनों को एक सा मानना, निज और पर में अवशेष दर्शन माने दोनों को एक सा मानना, और अवशेष ज्ञान माने दोनों को एक सा जानना, और अवशेष रति रूप रमणता रूप लीनता रूप मिथ्या चारित्र अनंतानंदी कसाई के उदय में होने वाला, ये तीनों का नाम स्वीकार चैतन्य परिणाम है, ये आत्मा के ही विकारी परिणाम है। यद्यपि ये तीनों आत्मा के श्रद्धा ज्ञान और चारित्र गुणों के विकारी परिणमन हैं, तथापि इन्हें सामान्य रूप से अज्ञान नाम से ही अभिहित किया जाता है। अब देखो यहाँ बार बार यहाँ पर अज्ञान शब्द बोलेंगे और उसका अर्थ समझना है, निज पर में अविशेष दर्शन, निज पर में अविशेष ज्ञान और निज पर में अविशेष दर्शन ज्ञान पूर्वक रति रूप आचरण, इतना अर्थ करना पड़ेगा। ये अर्थ है यहाँ पर अज्ञान का, ना तो दर्शनावरणी कर्म के उदय से होने वाला नहीं जानने रूप अज्ञान है, ये नहीं है यहाँ पर, चाल नहीं ना अभिव्यक्त किया जाता है। इन्हीं परिणामों को 93वीं गाथा में पीछे पीछे बिल्कुल एक ही गाथा पीछे 94-95वीं है ना, पुद्गल का परिणाम कहा था और यहाँ इन्हें स्वीकार चैतन्य परिणाम कहा जा रहा है। अब हमको एक गाथा पीछे का भी याद नहीं रहता है कि वहाँ क्या कहा था, और हमारे चित्त में ये प्रश्न ही खड़ा नहीं होता कि एक मिनट में ये कह रहे हैं और एक मिनट में ये कह रहे हैं। और यहाँ ये बताया जा रहा है कि देखो कैसी विभिन्न अपेक्षाओं से विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार के कथन कैसे मिलते हैं। अब हम झगड़ना चाहें, एक दूसरे की बात पे काटने को उतारू हो जाएं, तो बस हम 93वीं 93वीं गाथा पढ़ेंगे तो 94वीं 95वीं पेश कर देना, जब 94वीं 95वीं पढ़ेंगे तो 93वीं पेश कर देना, और कहेंगे लिखा तो ये और बोलते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कभी कभी के शादबाद रूप जिनवाणी में तत्व समझने की जो सामर्थ है वो तो अद्भुत है, लेकिन लड़ने वालों को सामग्री भी कम नहीं है, जिंदगी भर लड़ते रह सकते हैं। और जब जनता इस बात को ना समझे तो फिर उसमें 100 गुनी वृद्धि हो जाती है। मैं आपको ऐसी घटना सुनाता हूँ कि आपके पैरों के तरह से उंगली निकल जाएगी। लेकिन भाई, दिल्ली में महासमिति की मीटिंग थी, मैं गोदका जी सब साथ में पादमी जी गए थे यहाँ से गाड़ी लेकर, साहू जी के बंगले पर ठहरे थे, बाबू भाई जी भी उसमें थे मीटिंग में। मतलब साहू जी ने हम लोगों को इतना सम्मान दिया था कि हमारी गाड़ी में उनने कब पेट्रोल भरवा दिया हमको पता ही नहीं चला। हम जब पेट्रोल पंप पे गए तो टंकी हमें फुल मिली, क्या इतना हृदय में सम्मान था। लेकिन जब अकेले घर में बैठे तो एकदम आग बबूला होकर बोले कि आप लोग क्या करते हैं, सारी समाज में झगड़ा मचा रखा है, ये कर रखा है, ये कर रखा है, ये कर रखा है, तो क्या हुआ साहब। कि आप ये कहते हैं कि विभाग में हे है झूठा है, और ऐसा उन्होंने बताई बातें। लेकिन मुझे तो लाल बहादुर शास्त्री ने बताया, लाल बहादुर शास्त्री में जैन समाज के प्रधानमंत्री वाले नहीं, कि विभाग में दूत रहे तो होता है क्या, विभाग में दूत रहे का होता है, एक सद्भूत एक असद्भूत, अरे एक सच्चा और एक झूठा। तो तुम असद्भूत व्यवहार की बात ही हमको बताते हो, और सद्भूत व्यवहार की बात आज तक बताई ही नहीं। इतने गुस्सा इतने बोलते रहे, अब पादमी जी भाई भोचक के, गोदका जी भोचक के, मैं भी सोचा क्या करें, समझते तो कुछ थे नहीं। उनके दिमाग में जम गई कि हमको धोखे में रखा गया और ये बताया गया और ऐसा हो गया। मैंने सोचा भी कैसे समझाए इनको, क्योंकि ये ज्यादा लंबा थोड़ा प्रवचन तो सुनने वाले हैं नहीं। तो मुझे एक तरकीब याद आई जो मैंने अपने पिताजी से सीखी थी। मैंने कहा साहब आपको बहुत धोखे में रखा गया है, व्यवहार दो नहीं चार प्रकार का होता है, ऐसी बात है। और मैंने कहा उपचय तो सदभूत अनुचय तो सदभूत, चारों बताए, उनके लक्षण बताए, भेद बताए, क्या मेरी समझ में नहीं आता है, ये ऐसा करते वो ऐसा करते ऐसा करते। मैं तो अभी अभी मेरी आंखें खुली तो उनकी आंखें फिर खुल गई। मेरे से पादमी जी बोले कि ये आपने कहां से निकाली तरकीब, हम तो सोच रहे थे क्या करें। मैंने कहा मेरे पिताजी एक उदाहरण दिया करते थे, क्यों एक उदाहरण दिया करते थे कि एक गांव में एक पंडित बेचारा रहता था, और वो अपने गांव वाले उसको सबसे समझते करते थे, वो समझाता था, उनका सब चलता था, प्रवचन भी होता था, सब धारा भी चलती थी। बाहर का एक पंडित आया, क्या बाहर का एक पंडित आया और उसने ऐसी ही कहा कि कैसी बातें करते हैं। वो बता रहा था भैया बात तो एक ही है, अपना ये है ये है ये है। तो उसने बताया कि जो बता रहा है आपको वेद दो होते हैं, अरे वेद तो चार होते हैं। कई हमें पंडित जी ने बताया ही नहीं। सारा गांव वृद्ध हो गया, आज तक धोखे में रखा, एक दिन धोखे में रखा, क्यों। अब वो घबराया चला गया, वो तो आग डाल करके, तो फिर गांव में आग लग गई। फिर हमने अपने गुरुजी से जाके कहा कि गुरुजी ऐसा ऐसा हो गया, कोई चिंता की बात नहीं है, हमें बुलाओ हम देख लेंगे सब। और गुरुजी गए तो उन्होंने कहा कि भैया कौन कहता है कि वेद चार होते हैं, आठ होते हैं, चार वेद और चार वेदनी। जब वेद होंगे तो उनकी पत्नी नहीं होगी, राम के साथ सीता है, शंकर के साथ पार्वती है, क्या बात तो सच्ची है। तो ऐसी ना समझ जब तक जनता रहेगी, ऐसे लोग ऐसे ही भड़काते रहेंगे और उनके ऐसे ही समाधान होते रहेंगे। जब तक आप स्वाध्याय नहीं करेंगे स्वयं गहराई से, हैं? ये दूसरों की अकल से काम चलने वाला नहीं है। कैंटनी ने पहले बहुत कहा करता था कि चार अंगुल की लंगोटी अपनी चाहिए, किसी की शादी में जाओ, विवाह में जाओ, घर पे अच्छे कपड़े नहीं हो तो आजकल बाजार में किराए से मिलने लग गए हैं, और घबराने की जरूरत नहीं है, दूल्हा के कपड़े भी किराए के ही होते हैं, तो वहां से ले लेना, खरीद लेना किराए पे और शादी निपटा लेना। एक बात ध्यान रखना, चार अंगुल की लंगोटी अपनी घर की रखना, वो किराए की मत लेना, कहीं किराए वाले ने वे छीन लिए सबके सामने तो तेरी लंगोटी तेरी इज्जत बचा देगी, नहीं तो वो इज्जत चली जाएगी। ऐसे ही सबकी सुनना, लेकिन चार अंगुल की अकल लंगोटी अपनी अवश्य रखना, तो ही तुम वस्तु के स्वरूप को प्राप्त कर सकोगे, और अन्यथा चक्कर में ही घूमते रहोगे। ख्याल में आए ना? देखो क्या है, एक गाथा पहले पुद्गल का कहा था और एक गाथा वाले बात जीव का कह रहे हैं, हैं? अब उसने एक ही उपाय अपेक्षा, समझ लो इतनी सी बात है। अब वही आचार्य और वही टीकाकार और वही स्वामी जी प्रवचनकार, हाँ? अब क्या करें, उसमें ही ऐसा है तो हम क्या करें, कोई क्या करेगा? हम तो कोई भी विद्वान वक्ता तो इसी का तो अर्थ बताएगा ना। देखो, भाव भावक संबंध वाले क्रोधादि भावों, देखो, और गे गायक को प्राप्त धर्मादि द्रव्यों को अपने आत्मा से भिन्न न जानकर, जब यार आत्मा में क्रोध हूँ, मैं मान हूँ आदि सविकार चैतन्य परिणाम रूप, और मैं आकाश हूँ, काल हूँ आदि सोपाधि परिणामों रूप परिणमित होता है, तब वह अपने इन सविकार चैतन्य परिणामों का और सोपाधि चैतन्य परिणामों का कर्ता भक्ता होता है। क्योंकि उक्त सविकार चैतन्य परिणाम और सोपाधिक चैतन्य परिणामों का एक नाम अज्ञान है। इस कारण यह कहा जाता है कि अज्ञान भाव रूप से परिणमित आत्मा अर्थात अज्ञानी आत्मा अज्ञान भाव का कर्ता भोक्ता है, ये अपेक्षा है। ख्याल में आए ना? यद्यपि धर्मादि गे भावों और क्रोधादि भावक भावों से निज भगवान आत्मा भिन्न है, तथापि निज आत्मा और इन भावों के बीच भेद ज्ञान न होने से यह आत्मा मैं धर्मादि द्रव्य रूप हूँ और मैं क्रोधादि भावों रूप हूँ, इस प्रकार के विकल्पों रूप परिणमित होता हुआ, ये विकल्प रूप परिणमित होता हुआ आत्मा इसी प्रकार के सिद्धांत रूप परिणमित होता है, इसी प्रकार के ज्ञान रूप परिणमित होता है, पर इसी प्रकार के आत्म रूप परिणमित होता है, और इसे ही अज्ञान रूप परिणमित होना कहा जाता है। इसका नाम है अज्ञान रूप परिणमित होना। इसमें कोई क्रिया मिलिया बाहर की कुछ भी नहीं आई, श्रद्धा में ऐसा जो माना और वो जाना, यही परिणमन, और इसके अनुसार बाहर में क्रिया हुई नहीं, वो जो राग भाव विद्यमान है और जो राग भाव विद्यमान है उस स्थिति की बात है। इस प्रकार परिणमित अज्ञानी आत्मा इस परिणमन का कर्ता होता है और यह परिणमन उस अज्ञानी आत्मा का कर्म होता है। देखो तो समय सार की गाथा में धन कुमार जी अज्ञान भाव का कर्ता आत्मा को कहा है कि नहीं, ये प्रवचन सार की बात है। तो एक वाक्य से हम सार खत्म कर देते हैं खेल, ये तो प्रवचन सार की बात है, तो समय सार की बात है, मूल में निकाल लो, आप देख लो अच्छी तरीके से आगे पीछे से चाहे जितना। उक्त दोनों गाथाओं और उनकी टीका में मात्र यही कहा गया है, ये इन सब का निष्कर्ष निकाल के रखा, इससे आपको पूरी गाथा का भाव ख्याल में आएगा। अमेरिका में एक डॉक्टर है, डॉक्टर महावीर कुमार जैन, महाराष्ट्रियन हैं और वो आजकल बहुत स्वाध्याय कर रहे हैं। उनने 2100 समय सार और 2100 छेड़ाला के सार अमेरिका में बुलाकर 700 बंडल 5-5 किलो के यहां से गए थे तो सारे अमेरिका में पहुंचाए और बहुत गहराई से इनका स्वाध्याय खुद करते हैं। तो मेरे को एक ही कहते हैं कि मैं तो आपका अंत में जो आप वो तात्पर्य लिखता है वो सबसे पहले पढ़ता हूं और फिर मैं गाथा टीका और सब पढ़ता हूं तो मेरी समझ में आ जाता है। मैं कहता हूं पहले भी पढ़ना उनसे और फिर बाद में भी पढ़ना, क्योंकि वो पूरा जितना तर्क वितर्क होगा वो हरेक को याद रहना जरूरी नहीं है, रह नहीं सकते हैं, वो निष्कर्ष रहना उसके दिमाग में जरूरी है। जैसे न्यायाधीश जब कोई मुकदमा सुनते हैं तो कभी कभी 700-700 पेज की फाइलें बन जाती हैं और वे पढ़कर एक एक पॉइंट एक एक तर्क पर विचार विमर्श करके उसके बारे में अपनी सहमति उस फैसले में लिखते हैं और कभी कभी वो फैसले भी सैकड़ों पेज के हो जाते हैं। आपने सुना होगा कि ये नक्की हो गया है कि वे अपराधी हैं और अब फैसला एक महीने बाद सुनाया जाएगा। एक महीने बाद क्या है, एक महीना चाहिए, फिर नक्की हो गया अपराधी है तो सुना तो झगड़ा खत्म। क्यों कि अभी उन्हें वो फैसला लिखना बाकी है, एक एक तर्क युक्ति के साथ निर्णय पे तो पहुंच गए थे, समझिए ना, उनका जवाब देते देते फिर अंत में वो 4-6 लाइनें लिखते हैं कि इसके आधार पर मैं निर्णय देता हूं कि इसको 10 साल की सजा और 2,00,000 का जुर्माना किया जाता है और 2,00,000 का जुर्माना नहीं देवे तो 2 साल की सजा और लगेगी और ये चाहे तो 2 महीना के भीतर सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाकर इसमें अपील कर सकता है और नहीं गया तो फिर ये होगा। तो ऐसा है, समझिए ना, जो उसमें मंथन हुआ है तो वास्तव में जिसके विरुद्ध सजा सुनाई गई है अथवा जिसने न्याय मांगा था उसको तो इससे ही प्रयोजन है, वो बाकी के तर्क वितर्क उसकी समझ में कुछ नहीं आएंगे, वकील जाने और वो मजिस्ट्रेट जाने, समझ ना। तो आप जो साधारण मुमुक्षु भाई हैं उनको तो ये निष्कर्ष जानना बहुत जरूरी है और इसलिए इस दृष्टि से ही इसकी उपयोगिता है, ख्याल नहीं ना, कि क्या चीज इसमें कही गई है। देखो अभी मैं आपको इसी गाथा के आधार पर एक बात कहता हूं बहुत मार्मिक। धर्मादि द्रव्य जिसमें शुद्ध भगवान भी है, कलापन ने कहा था ना, और ये भी बताया था कि गेय में और कर्म नो कर्म में क्या फर्क है। नो कर्म में खासकर कि पुण्य पाप के उदय से जो संयोग और संयोगी भाव हमें प्राप्त हुए हैं उन्हें भाव कर्म और नो कर्म कहते हैं। घात्या कर्म के उदय से जो संयोगी भाव मिले हैं वे भाव कर्म और अघात्या कर्मों के उदय से जो संयोग मिले हैं वे नो कर्म, और द्रव्य कर्म तो ज्ञानावरणादि हैं। और ये जो इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, हमारे पुण्य पाप से हमें नहीं मिले वो, यानी पुण्य पाप से मिले हो तो किसी नए से कह सकते हैं ना कि हमारे हैं, कि पुण्य के उदय से हमें एक मकान मिला है और मान लीजिए हमारा अधिकार है तो ये किसी व्यवहार में से हमारे हैं, ये तो हम कह सकते हैं ना। लेकिन ये धर्म द्रव अधर्म द्रव हमें किसी का से मिले, हमारे हम तो सिद्ध को भी कह सकते हैं हमारे पुण्य के उदय से मिला, अब भाग्य में रहो उदय आयो, क्यों कह सकते हैं। अधर्म द्रव को कैसे कहेंगे, अधर्म द्रव को कैसे कहेंगे, ये तो हमारे पुण्य पाप के उदय से नहीं मिले और फिर भी निमित्त तो है ना, क्या हमारे प्रणमन में काल द्रव्य निमित्त है, तो निमित्त तो वेद ही है जिनका हमारा कहीं दूर का भी रिश्ता नहीं है, क्या। और ये 6 द्रव्यों को जानना ये भगवान आत्मा का स्वभाव है, क्योंकि शुद्ध दशा में वो पर्याय प्रगट हैं, ये सब स्वभाव पर्याय हैं। क्या यदि कि कोई विकृति होती रागादि जैसी तो ये सिद्ध सदा दिशा में नहीं लेती। माने वो जो किसी कर्म के उदय से होता है, कर्म के उच्छेद से उपशम उपशम से होता है, वो नैमित्तिक भाव है। लेकिन जो हमारा स्वभाव है वो पारिणामिक भाव है, इसलिए ये तो हमारा स्वभाव पारिणामिक भाव है। अब वो भाग्य की बात यह है, जिनवाणी में जो ये एक अपेक्षा बनाई, तो पर का संबंध जहां जो भी बताए वो सब व्यवहार में डाल देना और असद भूत में डाल देना और उपचरित में। तो उन्होंने चार प्रकार के संबंधों को, कौन कर्ता भोक्ता एकत्व ममत्व और जानना, एक उस व्यवहार में डाल दिया है नहीं ना। अब आप यहां देख रहे हैं ना कि चार कोई पकड़ रहे, पांच में वो टकनी कर रहे, तो सारे व्यवहार का निषेध कैसे होगा? क्यों इतने का निषेध तो कर रहे हैं ना। दादा ख्याल नहीं, बात कहीं आई, उसके पीछे कारण है भाई साहब। ये तो हम तो मैं स्त्री पुत्र घर का इनका सबका कर्ता भोगता हूं और ये मेरे हैं, इतना उदय मात्र होने से ये तो किसी नए की अपेक्षा ये बात है, लेकिन वो किसी वो बात किसी उदय उदय से नहीं है, ऐसी अपेक्षा नहीं है। वो तो सिर्फ पर है ना, और पराश्रित व्यवहारा, पर इस न्याय से उन्होंने और तन्मय होके नहीं जानता, जो न्याय बताया उससे उन्होंने कर दिया। अब मैं आपको जानता हूं कि इनको इनका कर्ता भोक्ता बनना, उनका स्वामी बनना, इनमें एकत्व करना, ये मिथ्यात्व है। ऐसा सबको जानना ये मिथ्यात्व है क्या? जानना तो मिथ्यात्व नहीं है, लेकिन जानना मानना मिथ्यात्व है। तो सिद्ध भगवान ऐसे नहीं मानते होंगे। क्यों क्यों कहना मिथ्यात्व है? तो अरंत भगवान की दिव्य ध्वनि में नहीं आया होगा ये कि भैया द्रव्य क्षय होते हैं, कि तुम कैसे कह सकते हो, क्योंकि मैंने जाने हैं कि वो तो व्यवहार है, व्यवहार से जाना तो असत्यार्थ होता है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं चलता। शायद कल परसों मैंने बताया था कि वो किसी कर्म के उदय के कार्य नहीं है। ये जो चार चीजें हैं, एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व, ये मिथ्यात्व कर्म के उदय के परिणाम है। इनमें सब में मिथ्यात्व कर्म का उदय का परिणाम है, और पर का जानने रूप क्रिया किसी कर्म के उदय का परिणाम नहीं है। और लगाओ कदाचित पर्याय में तो क्षय भाव है, तो क्षय का कर्म के क्षय का परिणाम है, कर्म के क्षयोपशम का परिणाम है। लेकिन सभी धान बारह पसेरी नहीं तोले जा सकते, आचार्य देव ने भी तोले नहीं है। और मेरा ये कहना बहुत न्यायपूर्वक है कि भैया ठीक है, जहां वो बात आई है मैं उसका निषेध नहीं करता, वो भी 100% सच्ची है, और जब वो गाथा आएगी तब मैं वो ही प्रतिपादन करूंगा। लेकिन जब ये गाथा चल रही है और इसमें बहुत स्पष्ट लिखा है, तब वो बात कहां आती है? तब ये तर्क दिया जाता है कि नहीं 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 नहीं, नहीं। वो बात जब हम कहेंगे तो तब ये बात बताने से वो बात ढीली पड़ जाती है। मुझे भी ये तर्क स्वीकार है। मैं कहता हूं कि ये जब प्रकरण चल रहा है तो यहां वो बात बताने से ये बात ढीली पड़ जाएगी। ये भी तो ढीली नहीं पड़नी चाहिए। वो तर्क तो दोनों में एक साथ लगेगा कि नहीं? क्या मोदी दोनों में एक साथ लगेगा कि नहीं? जहां जहां जो जो योग्य थे तहां समझ वो थे, है ना। तो कहते स्वीकार चैतन्य परिणाम और सोपाधिक चैतन्य परिणाम। अब देखना, सोपाधिक चैतन्य परिणाम और स्वीकार चैतन्य परिणाम के बारे में जो आगे की गाथा में बहुत मार्मिक बात कही है, तो अपन वो गाथा ही पढ़ते हैं और उससे अपन को ख्याल में आएगी। देखो आप पढ़ते हैं, एवं पराणि दब्बाणि अप्रयम कुणदि मंद बुद्धियो अपानम अभिपरम करोति अपान भावेन। इसे तरह यह इस तरह मंद बुद्धि अज्ञानी जीव अपने आत्मा अपना आत्मा जो अपना द्रव्य है उसको पररूप करता है और पर पदार्थों को आत्मा रूप करता है। देखो देखा तथा स्थितम कर्तृत्व मूलम अज्ञानम। इससे एक बात सिद्ध हो गई, कौन सी? पर में जो हमारी कर्ता बुद्धि है उसका मूल अज्ञान है, ये बात सिद्ध हो गई। कर्ता का मूल अज्ञान है, इसलिए क्या करना चाहिए? हमें स्वाध्याय करना चाहिए। कहते नहीं नहीं भैया, ये नहीं कह रहे हम, क्योंकि अज्ञान है तो वो कौन सा अज्ञान? तो समय साहब नहीं पढ़ा वो अज्ञान है क्यों? तो नैचक्र नहीं पढ़ा वो अज्ञान है? तो शास्त्री नहीं हुए वो अज्ञान है? क्या अज्ञान है, कौन सा अज्ञान है? बोलो। एक भाई मेरे से बोले कि पंडित जी नए चक्र बहुत कठिन है, बुद्धि संजीव गोदा बहुत अच्छा समझाते हैं, लेकिन इसको नहीं पढ़े तो सम्मा दर्शन हो सकता है कि नहीं? किसी बात करते हो गारंटी से हो जाए? बिल्कुल गारंटी से हो जाएगा, बिल्कुल इसके पढ़े बिना सम्मा दर्शन हो जाएगा। हमको बहुत राहत मिल गई, हम तो बहुत माथा भारी हो गया था। इधर आओ इधर आओ बेटा, समय सार को नहीं पढ़े तो सम्मान हो सकता है कि नहीं? क्यों नहीं? वो तो बहुत जरूर, उसके बिना तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। तो मैंने कहा कुंड कुंड को सम्मान दर्शन था कि नहीं था? गौतम स्वामी को था कि नहीं था? सुधर्म स्वामी को था कि नहीं था? क्यों? इधर तो समय सार तो है? 2000 बरस पहले भी सम्मय दर्शन होता था कि नहीं होता था? एक बहुत बड़े तथ्य की तरफ आपका मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ, खतरनाक बात है। गौतम स्वामी को सम्मय दर्शन कैसे होगा? क्यों? सोचना जरा, सोचना माने जवाब नहीं देना है, सोचनी है अकेला। थोड़ा समय देता हूँ जिसमें आप सोचें। उनके सम्मय दर्शन का निमित्त कौन था? इसलिए भी तो कहने की बात है क्या? भगवान महावीर उनकी वाणी। अरे भैया, जब उन्हें सम्मय दर्शन हुआ तब तक तो महावीर की वाणी खिली ही नहीं थी क्या? तो उनके दर्शन से हो गया ना क्यों? अरे उन्हें दर्शन भी कहां हुए थे क्यों? वो तो मानस स्तंभ तक ही आए थे, तो मानस स्तंभ के दर्शन से ही हो गया था। तो थोड़ा ही दिव्य ध्वनि में ध्वनि सुनना, शास्त्र पढ़ना, मानस स्तंभों के दर्शन करो, हो जाएगा। इसको बोलते हैं पर्यायगत पात्रता निमित्त की गौणता। आयोग मिले ना? अरे देखो, पहले से कहीं उन्होंने उस तत्व ज्ञान को कहीं से सीखा होगा। मैं जानबूझ कर नहीं कहना चाहता हूँ कि कहीं उन्होंने भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी होगी, क्योंकि फिर भी हम एक जगह बंध जाएंगे। तो किसी ना किसी जो तत्व ज्ञान का सही निरूपण करता हो, सर्वज्ञ से लेकर ज्ञानी धर्मात्मा तक, किसी ना किसी से आगम से पढ़कर इस तत्व ज्ञान का परिचय उनको पहले था होगा। और क्या हुआ? तो मानस स्तंभ को देखकर तो जातिस्मरण हुआ। हाँ, ध्यान दर्शन में क्या कहना चाहता हूँ, मानस सम्मान दर्शन नहीं हुआ। और जातिस्मरण में वो जहां वो देशना आई ख्याल में, और वो जो पूरा तत्व ज्ञान था, वो दिमाग, उनके दिमाग में जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जो जो आवश्यक है वो सब स्पष्ट हो गया। तो मानस तंत्र भी उस जातिर्मेन में निमित्त है, और जातिर्मेन तो निमित्त हो गया ना, ये जातिर्मेन भी नहीं, वो जो देशनावास नहीं थी, वो जो क्यों, और वो जो तत्व ज्ञान उनके दिमाग में स्पष्ट हो गया था, वो धारणा में पड़ा था कहीं, उससे तो वो धारणा का ज्ञान सामने उपस्थित हुआ। मैं प्रत्यक्ष इसलिए नहीं बोलना चाहता हूं, वो केवल ज्ञान है, कौन सा प्रत्यक्ष हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, ध्यान रहे ना, स्मृति में आ गया, ख्याल नहीं, स्मृति में प्रत्यक्ष तो सामने ही है ना, रूप का प्रत्यक्ष और वर्तमान का प्रत्यक्ष, या जोड़ रूप ज्ञान जो होता है ना, सदप्रकारा इस प्रकार का, उससे वो उनका काम हो गया, और उसी वक्त उनको द्वादशांग का ज्ञान हो गया। ये भी कैसे हुआ, पढ़ाया किसी ने द्वादशांग, उन्हें द्वादशांग के पाठी हो गए, क्योंकि गंधर्व द्वादशांग के पाठी होते हैं, तो प्रश्न सुनने के बाद तब गंधर्व हो ही बने, गंधर्व तो पहले बने ना, तब तो प्रश्न खिरा, अभी खिरा नहीं प्रश्न तो क्या, और मन पर यह ज्ञान हो गया, और इतना हो जाने के बाद वास्तव में तो महावीर उनके गुरु रहे ही नहीं, क्यों, जब उनकी दिव्य ध्वनि खिली तो एक दिन एक मिनट भी उन्होंने सुनना बंद नहीं किया था ना, उनकी उपस्थिति अनिवार्य रूप से रही। क्या कहती है ये घटना, है इससे कुछ निष्कर्ष, भाई एक बार गुटोरम जी ने लिखा है कि एक बार तू ये निर्णय कर, शास्त्र के अभ्यास से, गुरुओं के समागम से, ज्ञानियों के समागम से, वो क्या आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से, परंपरा गुरु के उपदेश से और आत्मा के अनुभव से एक बार निर्णय कर, विकल्पात्मक ज्ञान में कर, कि कर्म हो जाएगा तो नहीं, कैसे नहीं होगा, हो बिल्कुल गारंटी से हो जाएगा, और नहीं हुआ तो मैं 1,000 रुपया दूंगा, क्या ये बनिया और सोच भी क्या सकते हैं, तो बनिया तुम्हें 1,000 की, हम तो 1,00,000 देवी तैयार, बड़े बनिया हो गए और क्या, क्यों इससे बड़ा बनिया होगा तो 1,00,00,000 दे दे तैयार हो जाएगा, क्यों नहीं, पंडित जी कहते हैं कि नहीं हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, इसी भव में हो जाएगा, और इसी भव में नहीं होगा तो अगले भव में हो जाएगा, उन्हें संस्कार, संस्कार माने वो धारणा में उपस्थित ज्ञान, ये नहीं के मुझे दुपट्टा ओढ़ने के संस्कार थे, मेरे को ये संस्कार थे, संस्कार डालो संस्कार, ये नहीं संस्कार, क्या क्या राजेंद्र जी, समझ में आया ना, क्या चीज, वो जो तूने तत्व ज्ञान सुना था वो तेरे उपयोग में आ गया था, लेकिन उस वक्त तुम ऐसा गुरु प्रसाद नहीं हो पाया, इसलिए वो अनुभव रूप प्रणमन नहीं हो पाया, उनकी बात कर रहा हूँ, जिनका अनुभव रूप प्रणमन हो गया उनकी तो कोई गजब ही बात है, पर छूट तो उनका भी जाता है, लेकिन उन उदाहरणों से घबराना नहीं कि मुनि 11 में 19 गिर के यहाँ आ जाता है, ऐसे आता है, ऐसे आ जाता है, क्या ना, आप समझे ना, ऐसा है ना, यदि धंधा करना है तो दिवालियों की बात नहीं सुनना, मैं वहां याद है बबलू दाहोद में एक विधान में मैं और बाहू भाई गए थे साथ में प्रवचन करने के लिए, पंचोली ने विधान किया था, तो फिर मैं वहां से बंबई जा रहा था, तो मेरे साथ सुरेंद्र तलाती था, तो मेरे से बोला कि तुम अपने परमात्म प्रकाश को मेरे पास भेज दो, तो मैं उसको ये धंधा सिखा दूंगा। तो मैंने कहा धंधा मंदा में हमारा कोई रस नहीं है, ये सब हमने रोडपतियों को करोड़पति करोड़पतियों को रोडपति होता देखा है, और ये घाटा इसमें घाटा है, माता 24 घंटा रहता है। तो उसने छूटते ही कहा ये वाक्य कि इन दिवालियों की बात नहीं सुनना, जो वो रोडपति से करोड़पति हैं उनकी कहानी नहीं सुनना। क्यों? ये समाज बहुत होशियार है, वो जो करोड़पति से रोडपति होता है एक सेकंड इनकी स्मृति में से निकल जाता है कि अब क्या देने वाला है जी, क्यों छाबा की पाईदारी में उनका नाम कट जाता होगा। क्यों? और जो रोडपति से करोड़पति होती है फटाफट उसका नाम आ जाता है, अगला मुख्य अतिथि वही होगा। इन दिवालियों की नहीं सुनना। मुझे उस दिन से समझ में आया तो मैं ये कहता हूँ कि 11वें गुणस्थान से गिर के पहले में आता है इनकी बात सुनना ही नहीं। तो पहला चीज जैसे आत्मा हो जाता है चला जाता है उनकी सुनना। क्यों? कि वो हतोत्साह करने वाली बात है और ये प्रोत्साहन देने वाली बात है। लेकिन वो बहुत ही ज्यादा कोई अभिमान में चढ़ जाए और वो हो जाए तो उसको उस सत्य का ज्ञान जनवाणी में कराया है तो जरूरत हो तो उसको भी करना, लेकिन 24 घंटा उसकी चिंतन करने की जरूरत नहीं है। मैं त्रिपाली ज्ञाता भगवान हूँ, क्यों ना हुई ये प्राप्ति स्वरूप यूं ही जान ले, है ना? एक छह महीना तू कहनो मेरो मान ले, और संकल्प और विकल्प के विचार तज अपनो मन एक ठोर आन ले। तू ही है कमल, तू ही है सर ता मैं, तू ही है कमल ताको तू ही है भ्रमर, तू ही सतारार है, तू ही कमल है और उसमें डूबने वाला भिनभिनाने वाला भौरा भी तू ही है। स्वाद पहचान ले। अब क्यों ना हुई है प्राप्ति, अवश्य हुई है प्राप्ति, स्वरूप यूं ही जान ले। ये क्या कह रहे बनासी दादी? हमारी गारंटी है कि हम गारंटी है किसकी? हमारी हमारी क्या की गारंटी है? अनंत भगवान की नहीं, वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। ये हमारी माताएं बहने देखती है ना कि वहां एक चीज रखी है अलवारी में, हम पूछते हैं हमारी टोपी कहाँ है? आत्मा खोजना आसान है और टोपी खोजना मुश्किल है, इसमें भी गुरु की जरूरत पड़ती है। कि टोपी कहाँ है? कि वहीं अलमारी में रखी है। कि अलमारी में तो देख के आया हूँ 3 दफे अच्छी तरीके से, वहां नहीं है। क्यों नहीं होगी? वहीं होगी और नहीं निकली तो क्यों नहीं निकलेगी? जब वहां रखी है अभी मेरी गारंटी नहीं है, वहां रखी है तो जाएगी कहां? कभी कभी मुझे लगता है कि इस टोपी की खोज के लिए भी गुरु की जरूरत पड़ती है। भगवान आत्मा तो इतना सूक्ष्म है तो उसके लिए खोज की गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर होता है 90 दफे तो ऐसा होता है कि टोपी वही निकल आती है, तो मुझे नहीं मिलती है, गुरुदेव को मिल जाती है। ऐसा भी होता है रजनी भाई, क्या था कि सचमुच वहां टोपी नहीं निकलती है तो मैं अब तो मानो गलती कह रहा नहीं थी, क्यों मान कोई ने उठा ली होगी। सेंट पर सेंट अपन को ही अपनी गलती माननी पड़ती है, ख्याल नहीं ना? इस संसार में हम रख रहे हैं इसमें सेंट पर सेंट अपनी ही गलती है, किसी दूसरे की गलती नहीं है। स्वरूप ही जान ले, वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। देखो अभी गाथा का अतिथि का अपन पढ़ते हैं, गाथा तो सामान्य है। देखो इस प्रकार गाथा है ना, हाँ 96 की, मैं क्रोध हूँ और मैं धर्मास्तिकाय हूँ। देखो ये गाथा बदल गई लेकिन विषय नहीं बदला है, वही चल रहा है। मैंने बोला कहाँ तक चलेगा? 97वीं गाथा तक मैं आपको पाठ करवा रहा हूँ ना। कहाँ से शुरू हुआ है? वहां से बात चल रही है। मैं क्रोध हूँ और मैं धर्मास्तिकाय हूँ इत्यादि की भांति जब यह आत्मा परद्रव्यों को अपने रूप और अपने को परद्रव्य रूप करता है, इसलिए यद्यपि यह आत्मा समस्त पर वस्तुओं के संबंध से रहित अनंत शुद्ध चैतन्य धातु मय है, तथापि अज्ञान के कारण ही, अज्ञान के कारण ही माने अज्ञान माने सोपादिक चैतन्य परिणाम और सदिकार चैतन्य परिणाम अथवा ऐसी श्रद्धा ज्ञान और चारित्र तीनों कारण ही सदिकार और सोपादिक किए गए चैतन्य परिणाम वाला होने से, वो कहते हैं ये जो चैतन्य परिणाम है ना आत्मा का उपयोग है, वो तो आत्मा का है, इस प्रकार के अपने भाव का कर्ता प्रतिभासित होता है। इस प्रकार भूताविष्ट और ध्यानाविष्ट पुरुष की भांति आत्मा के कर्तृत्व का मूल अज्ञान सिद्ध हुआ। दो उदाहरण दिए, एक भूताविष्ट और एक ध्यानाविष्ट। ये भूताविष्ट और ध्यानाविष्ट क्या है, चर्चा हो रही है। राजेंद्र जी ने कहा था दादा थानवी का था आएगी तो भूताविष्ट समझाएंगे तुम्हें, छुट्टी कर दी थी, थोड़ी चर्चा उत्तम चंद जी ने नहीं की थी ध्यानाविष्ट भूताविष्ट की, अब आप पूरी चर्चा अपन करते हैं। ये भूताविष्ट क्या है, ये भूत लग जाते हैं किसी को, ये सबको मालूम है, माथेरम डोलने लगते हैं ना, अब वो कोने लगते हैं सब ऐसे, ये भूत देने लग जाते हैं तो उनके शरीर में जितनी ताकत नहीं है उससे कई गुणी ताकत उनमें आ जाती है ना, आ जाती है ना, देखी आपने कि नहीं देखी, मैंने ऐसे देखे हैं कि जिस आदमी को यहाँ कोई बैठ के बीड़ी पिए तो वहां बैठना मुश्किल था, वोमिटिंग हो जाए, खुदा बीड़ी लाभ क्या कहते, और बाद में भूत उतर जाए तो वही वहां गंदा दे जाती है ना, उस गंदे में उसे दो मेटिंग होती है, उसमें खाते बीड़ी पीता है, अमानसिक कार्य करता है। अमानसिक का मतलब क्या होता है, अमानसिक माने मनुष्यों के योग्य नहीं, अपन ने तो अमानसिक अमानसिक अत्याचार, यानी मनुष्य जैसे अत्याचार नहीं कर सकता ऐसे अत्याचार, लेकिन अमानसिक माने मनुष्य जैसे काम कर ही नहीं सकता तो ऐसे काम करना लगता है भूताविष्ट। और ध्यानाविष्ट बहुत ध्यान दे, ऐसा है ऐसा बताया कोई एक आदमी ने कहा कि ध्यान करो, ऐसा ध्यान किया कि मैं जिस कमरे में बैठा हूं ना, वो बैठा था कि मैं बहुत बड़ा भैंसा हूं और मेरे इतने लंबे लंबे सींग हैं कि एक सींग जाके लोका कास के इस कोने में जाके टिक गया और दूसरा सींग लोका कास के उस कोने में टिक गया, इतना बड़ा भैंसा हूं। अब यदि मैं ऐसी गर्दन हिलाऊंगा तो क्योंकि सींग तो टूट नहीं सकते और वहां से हिल नहीं सकते तो मेरी गर्दन टूट जाएगी, इसलिए अगर बिल्कुल गर्दन नहीं हिलाता। ऐसे पुरुष का उदाहरण उन्होंने लिया, कहां से लाए होंगे आचार्य ऐसे सोचेंगे, पागल लोग उस वक्त भी होंगे जैसे आज भी है कुछ लोग कहते ना कि इसे नाक की नोक में देखो तो उपयोग स्थिर होगा, आत्मा के अनुभव की विधि क्या है, पहला शरीर का दर्शन, फिर श्वास दर्शन, फिर राग दोष दर्शन, क्यों ये दर्शन छोड़ना है कि ये दर्शन करना है, इसे उपयोग स्थिर हो, उपयोग को स्थिर करने की विधि क्यों, तो स्थिर करने की हम मान बाहर हो जाएंगे तो फटाफट आत्मा में चले जाएंगे और वहां स्थिर हो जाएंगे, आत्मा को जाने ही मेरा उसमें स्थिर हो जाएंगे क्यों। तो ऐसे लोग कहते होंगे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे कहते ध्यान में बैठते होंगे, ऐसा हो जाता होगा, उनकी गर्दन हिल जाती होगी तो अब गए तो विघ्न हो गया, क्यों गर्दन हिल गई खत्म, ध्यान तेरा भंग हो गया, शरीर बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए, तो कैसे नहीं हिलेगा, कि तुझे मौत दिखेगी तब नहीं हिलेगा। कैसे दिखेगी मौत? कहते तू भैंसा बन जा, अश्विनी कहते ऐसा किया तो गर्दन टूट जाएगी, और गर्दन टूट जाने का भय होगा तो गारंटी है और वो एकदम नहलाएगा नहीं, फिर वो गलती होने की संभावना रही है। अरे अकेले आत्मा फातमा के पीछे कोई गर्दन बंद नहीं करेगा। बहुत उदाहरण शास्त्रों में और जगह भी आते हैं, क्यों ऐसा मानेगा कि वो भरत चक्रवर्ती का तेल का कटोरा लेके गया, सारी रानियों को देख वनवास देख गया, सोना चांदी देख गया है, भर के दे दिया, तो साहब वो कटोरा कटोरा जैसे कोई कटोरा नहीं देख सकता। तो वो ये भी प्रैक्टिस करने का अच्छी कोशिश है, आप भी एक कटोरा लेकर के घूमा करे, ये तो शास्त्र की बात है, भरत चक्रवर्ती की बात है, क्यों तो उपयोग स्थिर करने का मौका मिल जाएगा। ऐसा भी उदाहरण आता है कि ये लोग संगीत गाने वाले होते हैं ना, जब वे गाते हैं तो सब लोग सभा झूमने लगती है, तो वास्तव में उस संगीत की बारीकियां और रस तो जो उसका विशेषज्ञ होता है, रसिया होता है, उसको ही आता है, सबको नहीं आता है। सब तो कहते क्या कर रहे हैं, पागल दिखते हैं सबको, सबको तो वे पागल दिखते हैं, कल नहीं ना, लेकिन जब सबके सर से हिला रहे तो अपन भी सर से हिलाओ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्यों क्यों बोलते कि नहीं बोलते, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऐसे बहुत लोग होते हैं, तो उनकी परीक्षा करने के लिए एक आग जो जिस आदमी ने सिर हिलाया इनके संगीत गाने में, पुलिस के अब आदमी खड़े कर दिए जानते नहीं, तलवार नंगी लेके उनका गर्दन काट देना, कह दिया काटना मारना नहीं है लेकिन भरी सभा में तुम्हें ऑर्डर दूंगा सबके सामने। पर अब संगीत उन्होंने किया तो सब ऐसे ऐसे, लेकिन जो असली रसिया थे वे भूल गए और एकदम झूमने लग गए ना, तो गर्दन के दम पे भी नहीं रुके, तो कहा देखो ये असली रसिया है। तो ऐसे ऐसे बहुत प्रयोग है मेरे कहने का मतलब, शास्त्रों में भी आते हैं और कई जगह आते हैं उदाहरण उनके रूप में, लोक में ऐसे बहुत से आते हैं ये सारी क्रियाएं करने के लिए, उसकी ट्रेनिंग देने के लिए। कलकत्ता में समाधि मान कराते हैं लोग महीनों पहले से, अरे आदि व्याधि उपाधि से रहे जो आत्मा का स्वभाव है जिसे हमने सारी जिंदगी समझा है, अब अपने उपयोग को इस तरह करना उसका काम है। अब ये क्या है, ये कौन सा रोग, पार्किंसंस हो गया, अब लोग शरीर ऐसा ऐसा, अब बाबू भाई का शरीर ऐसा ऐसा कांपता था कि नहीं कांपता था, तो उनका उपयोग आत्मा में उनका समाधि मरण हो सकता है कि नहीं हो सकता है, अरे हुआ। और तुम नहीं बिल्कुल पहलवान बन जाओ, बिल्कुल हिला नहीं ऐसा कर जाओ, और तुम्हारा नहीं होने वाला है। शरीर के यदि शरीर में पार्किंसंस की बीमारी हो गई तो उसके आत्मा के कल्याण करने का चांस चला गया, ऐसा तो नहीं है ना। तो वो कहते हैं कि वो ऐसा ध्यान आविष्मान है, ऐसे ध्यान का भैंसे का ध्यान, मैं नहीं कह रहा हूं भैंसे का ध्यान, खुद आचार्य ने लिखा है, ऐसी वहां पर प्रैक्टिस कराने वाले लोग उस वक्त ऐसे होंगे। हर काल में हर तरह के लोग रहे हैं, ऐसा नहीं हर तरह की जो प्रवृत्तियां 363 मत की शास्त्र में आई है ना, उस तरह की प्रवृत्ति वाले लोग कहीं ना कहीं हर जगह विद्यमान रहे हैं। तो अब मैं इस पर थोड़ी सी चर्चा ये करना चाहता हूँ कि भूतानिष्ट का उदाहरण काय के लिए दिया और ध्यानानिष्ट का काय के लिए, वो है ना स्वीकार चैतन्य परिणाम और सोपाधि चैतन्य परिणाम। तुम जो वो जो स्वीकार चैतन्य परिणाम है उसके लिए भूतानिष्ट का उदाहरण दिया ना, और जो वो सोपाधिक चैतन्य परिणाम है उसके लिए ध्यानानिष्ट का दिया। क्यों दिया? वो तो उस जीव को भूत लग गया, ये सच्ची बात है। घबराने में भी क्या कहता हूं कि पंडित जी आप भूतों को मानते हैं, मैं परंपरा गया था तो पंच कल्याणक था, फिर आप भी आ गए हैं पंच कल्याणक में, और गुरुगा जी गए थे, गुरुगा जी 15,000 रुपया भी दे आए थे जब हुआ था समाज का तरफ से, तो बोले आप भी यहाँ आ गए, नहीं क्यों यहाँ कहने के, आप भी भूतों को मानते हैं, मैं कहा हाँ मानते हैं, तब तो आसूत में लिखा है ना दंता जाति के देव होते हैं, हम नहीं मानेंगे क्या? भूतों को सच्चा देव मानना सच्चे देव जैसा उनका आदर सत्कार करना ये मिथ्यात्व है। उनके अस्तित्व से इनकार करना ये कोई सम्मान दर्शन नहीं है। तो टूर्नामेंट जी ने कहा और ये भी आते माथे में आते देखे जाते हैं। उन्हें तो यहां तक लिखा समय सार में कि हम झाड़ते हैं तो मंत्र से जहर उतरते देखा जाता, लिखा क्या नहीं लिखा। और दूर वो आदमी इतनी दूर है और हम इतनी दूर हैं और हम बोल भी नहीं रहे, मन ही मन में बोल रहे क्यों। अरे फूकने फूकने की बात नहीं है, फूक भी नहीं रहे और मंत्र उतर जाता है। और वहां तो अमृतचंद ने दो बातें और जोड़ दी, स्त्रियां विडम्बना को प्राप्त हो जाती है। अभी आएगा इसमें सब, ये सब उसने शास्त्र में लिखा है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूं, है ना। तो ये ऐसा है ये, क्योंकि वो स्वीकार चैतन्य परिणाम आत्मा में है, वो आत्मा की पर्याय है। एक भूत लग गया है माने वो कोई झूठा जो डोल रहा है वो ऐसी बात नहीं है क्या। सोपाधिक चेतन परिणाम में ध्यानाविष्ट, तो ध्यानाविष्ट में ऐसा ध्यान ऐसा है ही नहीं कहीं। यानी पर में हमें ने कुछ किया ही नहीं है आज तक, माना है कि कुछ किया ही नहीं है। ये राग तो हुआ है अपनी पर्याय में, और राग क्या कर्ता भगवान आत्मा अशुद्ध निश्चय ने से भी है, लेकिन वो कौन से राग का है, वो सम्यक दृष्टि को होने वाला राग रूप प्रणमन मिथ्यात्व वाला राग नहीं, ख्याल में है ना। इसलिए भूताविष्ट दिया और उसके लिए ध्यानाविष्ट दिया, कहते हैं सारा खेल कल्पना ही कल्पना का है। देखो धर्म ग्रुप भी निमित्त है ना भैया, और हमारे कर्म के बंध में राग भी निमित्त है, लेकिन धर्म ग्रुप से हमारा क्या संबंध है। आप मानते हैं कुछ निमित्त को, यदि मानते हो तो फिर तुम उसे करता मानो, उसका कुछ संबंध मानो ना। फिर धर्म द्रव्य की भी पूजा शुरू करो, आकाश द्रव्य की भी करो पूजा शुरू, क्यों काल द्रव्य की भी करो। काल द्रव्य हमारे प्रणवन में निमित्त है कि नहीं है। अच्छा क्यों बताओ देवेंद्र जी, हमारे पुण्य के उदय से के पाप के उदय से, क्यों धर्म द्रव्य को छुट्टी करो, अभी हम चक्कर में पड़ जाएंगे। आकाश द्रव्य की बात करो और काल देव की बात करो, क्यों छुट्टी क्यों की, क्योंकि सिद्ध भगवान पहुंच जाएंगे सिद्ध सभा में, फिर वे चलेंगे नहीं, कहेंगे यह धर्मदेव का काम नहीं रहा। लेकिन आकाश तो रहेगा, रहेंगे तो वे, उनके कौन सा कर्म का उदय है जिसकी वजह से वे आकाश उनके रहने में निमित्त रहेगा नहीं, निमित्त के नहीं, और उनमें परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, तो काल द्रव्य उसमें निमित्त रहेगा कि नहीं रहेगा। यानी ये बिल्कुल नहीं उसके कर्तृत्व रंच मात्र भी नहीं है, और ये उनकी बात कहने लगे तुम। उसके लिए फिर इष्टोपदेश में कह दिया कि सभी निमित्त धर्मास्तिकाय के समान ही उदासीन हैं, गते धर्मास्तिकाय बत, लिखा क्या नहीं लिखा, सभी निमित्त कार्य के होने में धर्मास्तिकाय के समान ही हैं। इसमें का कर्म कमाए थे उन्हीं कर्मों का उदय आया है, हमारा कैसे नहीं है। धर्मास्तिकाय तो नहीं कमाया था, तेरे कोई पुण्य पाप के उद्देश्य तो नहीं था, आकाश में रहने को तेरे को जगह दी है आकाश ने, क्यों बोलो। ताजवार्तिक में लिखा है कि तुम कहां ठहरे हो, स्वात्मनि अवतिष्ट मानित्वात्, मैं अपने आत्मा में ठहरा हूं। तो लोग कहेंगे पागल हो गया, हम तो ये पूछ रहे कौन से होटल में ठहरे हो, धर्मशाला में ठहरे हो, स्मारक में ठहरे हो, तो कौन से कमरे में ठहरे हो, क्यों। कि यहाँ एक ठेला रखा है 5 रुपये का और वहां मैं ठहरा हूँ, और जो सामने तुम्हारे खड़ा हूँ तो यहाँ तो मुझे ठहरा नहीं मानती, और मैं अपने आत्मा में ठहरा हूँ, क्यों है? क्यों है? निमित्त के बिना ठहरना कैसे होगा, रहना कैसे होगा। तो बोलो अलोकाकाश काय में रहता है, किस बात में नहीं, अपने में रहता है। अलोकाकाश अपने में रहता है तो बाकी के द्रव्य अपने में क्यों नहीं रह सकते हैं। इसलिए कहते हैं दोनों ही परिणामों का उदाहरण क्या दिया, भूताधिष्ट। भूताधिष्ट का क्यों दिया, कि वो है कुछ ऐसा नहीं, कुछ हुआ नहीं है, भूत माथे में आया है अब भूतों की पूजा करना चाहिए उतारने के लिए कि नहीं करना चाहिए, वो अन्य सब्जेक्ट है, समझे ना। लेकिन ये फैक्ट है, लेकिन वो धर्म द्रव्य में हूँ ये तो बिल्कुल ही फैक्ट नहीं है। इसमें मेरे कर्म के उदय से मुझे मिला है, ना कोई कर्म का उदय निमित्त है, ख्याल में आई ना। इसलिए उसको ध्यानाविष्ट का उदाहरण दिया, विशेष चर्चा करते।